ذرا شریف قسم کے لوگ ہیں یہ عمانی جو ہیں، بہت ہی
اچھا
مائلڈ طبیعت کے ہیں، ہاں مائلڈ طبیعت کے، دھیمے مزاج کے. تو وہ جو ذرا پھوپا ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے جو قطر کے جو عربز ہیں یا کہ جو سعودی عربز ہیں ان سے ذرا ڈفرینٹ ہیں یہ، ذرا ان سے ڈفرینٹ ہیں. تو ایسے ایسے ہوا جی وہاں پہ آج بڑا، تو وہاں پہ کافی انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو جو ہے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. اچھا جناب، انڈیا کے اندر جو ہیں حالات کافی پتلے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو آج کیا ہوا ہے کہ آفیشیل جو فگر آئی ہے انڈیا سے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM جنگس ٹاؤن ٹورانٹو.
جی
آفیشیل ایک فگر جو ڈیتھ کی آئی ہے، دیٹ از دا آفیشیل فگر، 300,000 لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے وہاں پہ. حالانکہ انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہاں پہ جو جرنلسٹ گئے ہوئے ہیں سی این این کے، رائٹرز کے، بی بی سی کے اور ساری دنیا سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آفیشیل فگر سے بہت زیادہ ہے کیسز کی بھی اور ڈیتھس کی بھی. بہرحال آفیشیل فگر جو آتی ہے اس میں اب جو ہے انڈیا ایکسکیوز می نمبر 3 پہ آ گیا ہے آفٹر یو ایس اے اینڈ برازیل. یو ایس اے میں سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی تھیں، پھر برازیل میں ہوئی ہیں اور اب انڈیا میں ہوئی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو کانسٹنٹلی بتا رہے ہیں، ایک تو کووڈ 19 کے کیسز بڑھ رہے ہیں، کووڈ 19 کے بہت سے پیشنٹس جو کہ ریکور کر جاتے ہیں ان کو بلیک فنگس ہو رہا تھا جو کہ ہم آپ کو بہت دنوں سے بتا رہے تھے. تو لوگ جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ جاز نکال رہے ہیں لوگوں کے کہ وہ زندہ رہ جائیں، یا آنکھیں ان کی نکال رہے ہیں کہ وہ زندہ رہ جائیں. اس کے ساتھ اب کیا نیوز آنے لگی ہے کہ اب وہاں پہ وائٹ فنگس اور یلو فنگس بھی ہونے لگا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ لوگ اس لیے وہاں پہ ڈاکٹرز پریشان ہیں کہ یہ جو یلو فنگس ہے نا خاص طور پہ ماجد بھائی، یہ ریپٹائلز میں ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی بیماری پھیل رہی ہے، کہ کوئی کلینلینس ہے کہ نہیں ہے. تو جو میڈیا ادارے جو کہ آزاد ہیں، 2-3 ہی ہیں وہاں پہ، اب جو آزاد میڈیا ادارے ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں، جو انہوں نے وہ جا کے سارے وہاں پہ جو انویسٹیگیٹ کیا، ان کو پتا چلا ہے کہ چونکہ وہاں پہ آکسیجن بیڈز کم ہیں، آکسیجن کے سلینڈرز کم ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک آدمی کو انہوں نے لگایا ہوتا ہے کووڈ کے، جب وہ ٹھیک ہو کے چلا جاتا ہے بالکل ویسے ہی اتار کے دوسرے کو لگا دیتے ہیں. اس سے یہ چیز جو ہے یہ خرابی کا باعث بنتی جا رہی ہے، اور اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ جو ان کو سٹیرائڈز دیے گئے تھے اور جو شوگر کنٹینٹ ان کی باڈی میں بہت بڑھ گیا ہے، اور پھر جو ڈیمپ ماحول میں کچھ لوگ رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ساری جو ہیں بیماریاں سامنے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی،
مگر یہ وہاں پر بھی جب شروع شروع میں جب آیا تھا نا ووہان میں، چائنا میں جب آیا تھا، تو ان کو جب پتا نہیں تھا کہ یہ بیٹس سے نکلا ہے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ریپٹائل سے آیا ہے. فرسٹ انیشیٹو ان کا یہ تھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ، اب ان کو یہ پتا لگ گیا کہ یہ مارکیٹ سے آیا ہے،
ویٹ مارکیٹ سے،
یہ ویٹ مارکیٹ سے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کہاں سے کون سے جانور سے آیا ہے، تو انہوں نے پہلے سب سے پہلے ریپٹائلز کو دیکھا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے ریپٹائل سے یہ آیا ہو، مگر بعد میں ان کو پتا لگا کہ نہیں یہ تو بیٹس ہیں جن کے واسطے. مگر انڈیا میں اگر ریپٹائلز کا آ رہا ہے تو یو نو کڈ بی
ہاں جی، تو بڑی بڑی سر. اچھا جی، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے ابھی وہ سائیکلون جو ٹکٹے آیا ہوا تھا اس نے کافی تباہی مچائی ہے کوسٹل ایریاز کے اندر. اب انڈیا کا جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ایک اور اس سے بھی بڑا طوفان آ رہا ہے، اینڈ دیٹ از سائیکلون یاس. سائیکلون یاس وہاں پہ آ رہا ہے، اور اس میں جو ہوائیں ہیں ان کی اسپیڈ ہوئے گی 155 کلومیٹر پر آور، یا کہ جو ہے 165 کلومیٹر پر آور ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ایز ارلی ایز وینسڈے May 26 کو ہم جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کریں انڈیا کے کوسٹل ایریاز میں. تو اس کے لیے کیونکہ پہلی دفعہ تو ٹکٹے کے طرف کے ٹائم پہ تو یہ اتنے نہیں تھے وہ ساودھان جس کو بول سکتے ہیں آپ، تیار نہیں تھے. اس وقت انڈیا کی ملٹری نیوی سب بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا تو اب اس کی تیاری انہوں نے کیا کی ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ 4 وارشپس کھڑے کیے ہوئے کوسٹل ایریاز میں، 11 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس کھڑے کیے ہوئے ہیں، 25 ہیلی کاپٹرز کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور آلریڈی لوگوں کو اس پورے علاقے سے ایویکیویٹ کر لیا انہوں نے. تو یہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے تیاری جو ہے وہ کی ہوئی ہے. اچھا جی، پی ٹی آئی کی آج ایک نیوز ہے، اینڈ اگین دس پی ٹی آئی مینس پریس ٹرسٹ آف انڈیا، ناٹ پی ٹی آئی پاکستان، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کی اس خبر کے مطابق جو بھارتیہ کسان یونین ہے ان کے جو لیڈر ہیں راکیش ٹکیٹ، انہوں نے آج کہا ہے جی کہ آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں، سینٹر کی گورنمنٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں مودی جی کہ ہم آپ سے بات کیے بغیر ہم یہاں سے کسان جو ہیں جو دلی کے جو بارڈرز پہ بیٹھے ہیں ہم اٹھ جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے اور ہم بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوئے گا. हम से जब तक आप बात नहीं करेंगे हम इधर ही बैठे रहेंगे और हम मरते रहेंगे बेशक, लेकिन हम इधर ही बैठे रहेंगे। ये असल में आए हुए थे, आज एक रिपोर्ट आई थी कि ये जो अभय सिंह संधु हैं जो कि इनके जो फ्रीडम फाइटर भगत सिंह जो थे उनके नेफ्यू थे, उनकी डेथ अभी हो गई है, तो उसका अफसोस करने के लिए वो आए हुए थे, आई मीन ऑफकोर्स ड्यू टू कोविड-19। तो ये जो संधु साहब का अफसोस करने आए थे तो रिपोर्टर्स वहां पे आ गए, तो उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा जी हम उनसे, तो उन्होंने कहा जी अब क्या बात करनी है, कितने तो राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। तो आज फिर इन्होंने ये जो है राकेश टिकैत साहब, इन्होंने आज फिर से कहा है कि निगोसिएशन तो एक ही होगी कि आप ये तीन फार्म लॉज खत्म कर दें।
और वो उसके लिए तैयार नहीं
है, उसके लिए सेंटर तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं जी अगर सेंटर तैयार नहीं है तो हम भी इधर ही बैठे हुए हैं, बस इधर ही हम बैठे रहेंगे, हम उठ नहीं रहे। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। अच्छा जी ठीक है जी। अच्छा जनाब सिंध के अंदर जनाब आज तो बड़ा ही, चीफ मिनिस्टर जो मुराद अली शाह साहब हैं वो आज बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा जी कि कंप्लीट हम जो है लॉकडाउन और बैन लगा रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, और हम देखना चाहते हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा केसेस हैं कोविड-19 के वो कराची के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं। पूरे पाकिस्तान से अगर हम देखें तो सिंध में सबसे ज्यादा केसेस हैं, इसलिए जी एज अ चीफ मिनिस्टर मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं कि बिल्कुल इसको सब शट डाउन कर दें और कोई अननेसेसरी मूवमेंट जो है 8 PM के आफ्टर 8 PM नहीं होगी। तो आज ये जो है मीटिंग अपनी चेयर कर रहे थे और इन्होंने कहा है सारे लोगों को फिर से एक दफा अर्ज किया है कि भाई आप SOPs को फॉलो करें। अब कितना फॉलो होएगा क्या होएगा वो तो
आपको ही पता है मुझे ही पता है
कि कितना लोग करेंगे क्रांची में, लेकिन देखने की बात यह है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। माजिद भाई ठीक है जी। अच्छा जी आज जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उनकी आज बहुत ही सीनियर जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ आज मीटिंग थी, क्योंकि जाहिर है कि वो जो मामला आजकल मुल्क में चल रहे हैं, ISI का जो सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में उसके अंदर थे। और ये बहुत दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमरीका जो है अब इनसे मांग रहा है जी आप हमें बेसिस दें क्योंकि हम ये सारा कुछ पुल करना चाहते हैं अफगानिस्तान से और यहां पे चीजें सेटल करना चाहते हैं। पाकिस्तान जो है इट इज यू नो वॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी थिन लाइन इन अ सेंस के वो अमेरिका से बिगाड़ना भी नहीं चाहता है जाहिर है, और चाइना को तो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त जो है बिल्कुल, कुछ लोगों को शायद मेरी बात अच्छी ना लगे लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल लाइफ सपोर्ट पे है। और अगर चाइना ने अपना CPAC का जो प्रोजेक्ट है वो रोल बैक कर दिया तो बहुत ही बुरे हालात हो सकते हैं मुल्क के अंदर। तो चाइना के साथ तो लड़ाई बिल्कुल ही अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, एट द सेम टाइम वो दे नहीं सकते हैं यहां पे बेसिस, क्योंकि उन बेसिस से आपको पता ही अमेरिका भी कैसा है, वो कहेगा तो ये कि जी हम तो अमेरिका, हम जो अफगानिस्तान है उसमें तुम्हारी लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है ले रहे हैं, लेकिन वो करेंगे क्या कि वो नजर रखेंगे चाइना पे जो कि चाइना को बिल्कुल मंजूर नहीं है, राइट। तो ये उसके लिए आज ये बहुत हाई लेवल की मीटिंग थी और इसके अंदर जितने टॉप जो वहां पे जर्नैल थे वो थे शाह महमूद कुरैशी साहब थे, डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है चौधरी फवाद थे वहां पे, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद थे, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नईम रजा थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा थे, और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर, और IGI के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं DG जो ISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। तो आप सोच सकते हैं कि ये किस लेवल की आज मीटिंग थी,
क्रीम, ऑल द क्रीम,
ऑल द क्रीम, सारी क्रीम वहां पे आज बैठी हुई थी और ये बहुत ही जो है इस मुद्दे के ऊपर कर रही थी। तो वही जैसे भी जनरल लोधी भी कह रहे थे कि अगर इनका दिमाग ठीक हुआ तो, और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री इनको यही कहेगी कि भाई चाइना को हम नाराज नहीं कर सकते, आप उसको ना करें और अमेरिका को जरा टैकल करने की कोशिश करें, क्योंकि सीधी बात है माजिद भाई, मेरा ख्याल है इनको कहना चाहिए कि भाई तुम्हारी इतनी क्लोज फ्रेंडशिप इंडिया के साथ है, तुम भाई अपनी वो बेसिस इंडिया में बनाओ जाके। और इंडिया अपेरेंटली जो न्यूज आजकल आ रही है वो ये है कि इंडिया मतलब विलिंग भी है, उनको देना भी चाहता है, क्योंकि क्या होता है ना माजिद भाई कि जिस मुल्क में अमेरिका अपनी बेस बनाता है ना वहां पे बहुत सारे पैसा भी खर्च करता है, तो इंडिया चाहता है कि मतलब वहां पे अगर एक दो बेसिस वो बना लेते हैं और वो अगर आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, जरा थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज और ज्यादा आए,
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर
तैयार करते हैं वो लोग, तो वो वहां पे डेवलप हो जाएगा जिस इलाके में। तो बहरहाल एनीवेज देखेंगे अभी क्या होगा। अच्छा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो है इमरान खान साहब ने उनकी आज मुलाकात पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के साथ भी थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोग अब इनके बीच में दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनके और जहांगीर तरीन साहब के बीच में। तो आज इमरान खान साहब ने फिर से एक दफा बहुत ज्यादा जो है वो क्लियर कर दिया. उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी गवर्नमेंट लेकर आया था तो मैंने ये कहा था कि डिसऑनेस्टी को नहीं पसंद किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी से गवर्नमेंट चलाई जाएगी और किसी के साथ बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जो है सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा. तो मुझे ही अगर आपने ये एग्जाम्पल सेट करने की ना इजाजत दी तो फिर मुल्क के अंदर हालात जो है वो ठीक नहीं रहेंगे. तो उन्होंने आज कहा कि चाहे मेरी गवर्नमेंट रहे चाहे ना रहे, लेकिन मैं किसी गलत आदमी को जो है सपोर्ट नहीं करूंगा. जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिलेगी.
ब्यूटीफुल,
ठीक है जी. ये है. अच्छा जनाब, आज और भी कुछ अंदर की खबरें आई हैं और वो ये है कि जिनीवा के अंदर पाकिस्तान और यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनकी जी कुछ मुलाकातें हुई हैं. और इसका प्रीएम्बल जो है हम आपको बता देते हैं कि कुछ दिन पहले सेनेट के अंदर सेनेटर जो मैनचिन जो हैं, वेस्ट वर्जीनिया के डेमोक्रेट जो हैं, उन्होंने ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर इंडो पैसिफिक अफेयर्स डेविड हेलवी हैं, उनसे क्वेश्चन किया था कि भाई इस वक्त अमरीका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ कहां पे खड़े हुए हैं. अब सॉरी टू यूज दिस वर्ड कि अमरीका की फटी पड़ी है, उसको पाकिस्तान की जरूरत है, ठीक है जी. तो उसको जो है वो पाकिस्तान की दोस्ती चाहिए इस वक्त. तो ये जो हैं डेविड हेलवी साहब जो हैं उन्होंने जनाब पाकिस्तान की बड़ी तारीफ की वहां पे खड़े होके कि पाकिस्तान जैसा तो अजीम मुल्क दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ और ये बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा हमारी
अभी नई खबर रही है.
हाँ, ये इनको अभी पता चला है.
अच्छा अच्छा.
हाँ अभी रिसेंटली, क्योंकि मजद भाई बाइडन साहब की गवर्नमेंट को आए हुए दिन कितने हुए हैं.
अच्छा,
तो इनको भी पता चला ना. हाँ इनको अभी पता. वो जो रेगन शेगन के जमाने की जो दोस्तियां थी,
बहुत अच्छे लोग हैं.
हाँ हाँ हाँ, वो रेगन शेगन के जमाने के जो अमरीकन थे वो और थे. ये उस जमाने में कहाँ थे, ये तो बेचारे
लीडर्स भी डिफरेंट थे.
हाँ लीडर्स भी डिफरेंट थे.
लीडर्स जो है ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है बहुत अच्छे बच्चे हैं.
हाँ बहुत अच्छे. तो ये जो है ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने हमारी बड़ा साथ दिया है और अगर अफगानिस्तान में पीस आएगा तो पाकिस्तान की वजह से आएगा. तो मैं अपना जरा सर खुजा रही थी कि फिर आप ये दोहा में मीटिंग्स क्यों करवाते हैं, फिर आप हिंदुस्तान को स्टेक होल्डर क्यों बनाने की कोशिश करते हैं.
लास्ट ईयर दिस टाइम यू एंड आई वर सिटिंग हियर, वी सेड इट,
इट विल नॉट गो अहेड.
एग्जैक्टली,
अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो पीस प्रोसेस नहीं चलेगा.
हाँ.
नहीं चलेगा. अच्छा जी, आज इन्होंने फिर से कहा जी कि जब तक पाकिस्तान है वहां पे तभी ये पीस प्रोसेस चलेगा. तो ये लोग बड़े अच्छे हैं पाकिस्तानी, इन्होंने हमेशा हमें जो है अफगानिस्तान में लॉजिस्टिकल जो हेल्प हम देनी होती थी तो हम इनका लैंड रूट भी यूज करते थे और एयर स्पेस भी यूज करते थे. तो ये बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी, इन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की हुई है. तो इन्होंने उनको जी जवाब देकर उनको चुप करके बिठा दिया वहां पर.
अब जब अगर वो ना करते पाकिस्तान फिर क्या.
हाँ फिर जो बयान आएगा मजद भाई वो हम दो दिन के बाद सुनेंगे. ठीक है जी. तो अब आज का बयान तो ये था जनाब. ठीक है जी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए. तो ये बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तानी.
बहुत अच्छे लोग हैं जी,
बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रोहन के साथ. तो अब देखेंगे अब क्या आता है, परसों क्या बयान आएगा माजिद भाई वो जो है हम आपको बताएंगे. क्योंकि हनीमून पीरियड ज्यादा लंबा चलता नहीं है ना माजिद भाई.
नहीं, नहीं, नहीं.
तो इसलिए जो है
मैंने जो कहा कर दो अच्छे लोग, मैंने जो कहा नहीं करोगे बुरे लोग.
हाँ माय वे और द हाईवे.
माय वे हाईवे.
हाँ हाँ, बस यही है ना चक्कर माजिद भाई. ठीक है जी. अच्छा जनाब, अब ये मैंने फिर कुछ कहा तो आप बुरा मना जाएंगे. मुझे वो आपने बचपन में स्टोरी सुनी थी अली बाबा 40 चोर.
हाँ, हाँ,
सुनी थी ना.
हाँ,
बस आज वही हुआ है. वो अली बाबा
40 चोर आ गए.
वो सारे जमा हो गए हैं. अब अली बाबा आपने इनमें से खुद ढूंढना है.
अच्छा
ठीक है, मैं आपकी इंटेलिजेंस पे छोड़ रही हूँ.
ओके
ठीक है जी,
ऑलरेडी ढूंढ लिया मैंने.
ढूंढ लिया आपने. वेरी गुड, मैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ठीक है जी. अच्छा जनाब, आज क्या हुआ है, आज पीएमएलएन के जो प्रेसिडेंट हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक डिनर दिया था और उस डिनर में उन्होंने सारी ऑपोजिशन को बुलाया था. हाँ
जी,
पंजाबी है ना, दिल से वड्डा है ना.
हाँ जी, हाँ जी,
कोई नहीं यार, आ जाओ फिर किए पायान नहीं. अच्छा जी, तो
इसमें
नहीं कोई किसी ने मास्क नहीं पहनने, कोई एसओपीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है. पास पास बैठना है और मुर्ख फड़ने हैं आपने. ठीक है जी. हाँ, मुर्गे हमने बहुत बना लिए.
अच्छी बात.
हाँ जी. अच्छा जी, तो सारी ऑपोजिशन को बुलाया इनको. तो पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया और बाकी ऑपोजिशन पार्टियों ने कि चूंकि हमारा एजेंडा है पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाने का, इसलिए हमको जाके ये देखें, देखें प्यारी प्यारी शक्लें देखें, ये सारे आज उस ईशाइये में थे. ठीक है जी. तो हमने जाके जो है वहां पे अटेंड करना है और हमने जो है इनका साथ देना है. तो पहले तो उन्होंने पीपीपी ने कहा कि जी हम पूछेंगे बिलावल भुट्टो साहब से कि हमको जाना है कि नहीं जाना है. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी जाना चाहिए. तो वहां पे ये शहरी रहमान साहिबा, राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी और ये सारे जो थे जनाब
जमा हो गए जी.
हाँ जी, हाँ,
फिर एक और पीडीएम बन रहा है.
हाँ, ये पीडी डम 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 कुछ और बने.
डीडीएम डम डम
डम डम डम बनेगा ये
डम डम
पीडीएम तो बन चुका है ना मजद भाई, अब ये पीडीएम डम 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 बनेगा।
अच्छा, इसे मौलाना साहब को नहीं बुलाया?
नहीं, मौलाना साहब को भी बुलाया लेकिन अब अभी तक तस्वीरें उनकी आई नहीं है, मुझे लगता है कल तक आ जाएंगी शायद।
अच्छा अच्छा अच्छा,
तो मौलाना की भी हम शायद दिखा देंगे। तो लेकिन मौलाना साहब थोड़े से इनसे नाराज थे, लेकिन बहरहाल देखेंगे, शायद आए हो, मुझे अभी तक पूरी लिस्ट नहीं आई, शायद आई होगी तो हम कल बताएंगे आपको। अच्छा जनाब, एफआईए ने जो है वो पीआईए के कुछ ऑफिशियल्स जो हैं, जो कि उनके एक्टिंग सीईओ हैं और कुछ लोग जो हैं उनको जनाब पकड़ा है। पीआईए के एक्स चेयरमैन थे नासर जाफर और इरफान इलाही, एक्स एक्टिंग सीईओ और ये जो हैं बर्नर्ड हिल्डनब्रांड और बाकी कुछ इंजीनियर्स वगैरह जो हैं उनको पकड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इन्होंने पीआईए को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया है 1 बिलियन रुपीज का। इन्होंने किया क्या जी, इन्होंने पैसे ले लिए और जो कोई कंपनी का नाम लिख दिया कि ये हमने इनको दिया है कि ये अपग्रेड करेंगे तैयारों को। तो ना तो जनाब वो अपग्रेड हुए, ना उन तैयारों के अंदर टीवी आए, ना सीटें अच्छी लगी, कुछ भी नहीं हुआ।
हाँ,
तो उस सिलसिले में एफआईए ने अब इनको पकड़ाया और उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ बताओ, ये कच्चा चटा, ये जो है तुम्हारा
पैसे का है।
हाँ, पैहे किधर है, पैहे 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 कटो, पैहे कटो,
पैहे कितने,
हाँ पैहे कितने, पैहे दसो। तो जी जनाब अब इनको पकड़ाया तो पता चलेंगे कि ये पैहे किधर गए। अच्छा जी, वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज। आपको पता ही है कि एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इंडियन फिल्म थी, वो बनाई थी जोया अख्तर ने और उसके अंदर थे ऋतिक रोशन, ये फरहान अख्तर और जो हैं ये एक्टर अभय देओल और कैटरीना कैफ, कल्कि कोचलिन। तो आज इसका बड़ा एक 10 साल क्योंकि इसको होने वाले हैं अभी, तो इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया जो है अभय देओल ने जो है वो किया। वो कहने लगे हम एक सीन जो है वो शूट करने लगे थे, तो हम गाड़ी जो है ये चला रहा था ऋतिक रोशन, तो ये गाड़ी वहां पर चला के लाया और हम उसमें बैठे हुए थे और ये बाहर आ गया और इसने हैंड ब्रेक नहीं लगाई, तो वो गाड़ी जो है वो खाई की तरफ जाने लग गई।
ओ माय गॉड।
तो कहते हैं कि वो तो बड़ा तेज निकला वो जो था फरहान अख्तर, उसने तो एकदम से जंप करने की कोशिश बाहर की, बाय दैट टाइम खैर ऋतिक भी आ गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया और एकदम उसने हैंड ब्रेक खींची, लेकिन कहता है मैं तो बिल्कुल फ्रीज हो गया उस मोमेंट में, तो मुझे लगा कि बस गाड़ी नीचे गई और मैं मरा, मरा का मरा, मरा का मरा। तो कहते हैं ये
स्केरी टाइम,
हाँ वेरी स्केरी। और कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली एक सीन हम वही वाला शूट करने वाले थे, उससे बिल्कुल पहले जो है जी ये हुआ। तो वो बहरहाल वो कहते हैं जी के थैंक गॉड इसकी जो है वो जल्दी इसने सोच लिया ऋतिक ने और उसको गाड़ी को जो है वो रोक लिया। और जनाब सुल्तान, मुल्तान सुल्तान के जो ऑलराउंडर हैं हमारे बूम बूम शाहिद अफरीदी साहब, वो अब दुबई नहीं, अबूधाबी नहीं जा सकेंगे पीएसएल के बाकी के मैचेस खेलने। उसकी वजह यह है कि ये ट्रेनिंग कर रहे थे कराची में और कराची में अचानक से इनको ट्रेनिंग के बीच में जो बैक पेन है वो निकल आई, तो डॉक्टर्स ने इनको कंप्लीट बेड रेस्ट जो है वो अब इनको दिया है और इनको रिप्लेस कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ अफरीदी, जो कि अब जा रहे हैं अबूधाबी स्क्वाड को करने के लिए। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को होस्ट कर सकता है फॉर 3 ODIs and 3 T20s अगस्त सितंबर में। पाकिस्तान जो है वो आएगा वेस्ट इंडीज के जो है वो टूर से, तो उसमें ये इनको कर सकते हैं। इनके जो हैं जो प्लेयर थे मोहम्मद नबी, मोहम्मद नबी का कहना है कि मैंने जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात की थी और मैंने उनसे कहा था कि हम दोनों जो नेशंस हैं हमारे बीच में क्रिकेट होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मेरे से वादा किया था कि हमारे बीच में जरूर होगी। तो अकॉर्डिंग टू पीसीबी का जो विंडो था वो अगस्त सेप्टेम्बर का था, तो उन्होंने कहा कि इसके बीच में फिर आप लोग जो हैं खेल सकते हैं, तो अब ये भी जो है वो होगा। और उसके बाद जो है जाहिर है कि सितंबर में सीरीज जो है वो पाकिस्तान करेगा, न्यूजीलैंड को भी जो है वो होस्ट कर सकता है, तो बड़ा एक्साइटिंग है। यानी कि फिर अफगानिस्तान, फिर जो है उससे पहले वो लोग आए होंगे वेस्टइंडीज से, एंड देन अफगानिस्तान एंड देन न्यूजीलैंड को अपना बुलाएंगे। तो वो काफी एक्साइटिंग जो है क्रिकेटिंग सीजन जो है आने वाला है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट हमारे जो पाकिस्तान के बोलिंग कोच हैं वकार यूनुस साहब। वकार यूनुस साहब जो हैं वो देखे गए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने बेटे के साथ और इन्होंने एक ट्वीट किया कि ज्वाइनिंग प्रोटेस्ट इन सिडनी, या अल्लाह हेल्प आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन पैलेस्टाइन एट 30 कमील खान एंड अजान वकार। तो ये जो है वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा था पैलेस्टाइन के हक में रैली हो रही थी, उसको इन्होंने ज्वाइन की और ये इन्होंने जो है वहां पे उठाए हुए थे पोस्टर्स और अपने बच्चों के साथ थे वहां पे। तो ये काफी जो है हेडलाइंस बनी है वहां पे भी, क्योंकि जाहिर है कि वकार यूनुस तो आपको पता ही है वर्ल्ड क्लास बॉलर था, तो बड़ी इनको कवरेज मिली है जनाब वहां पे।
वकार यूनुस की वाइफ ही ऑस्ट्रेलियन है शायद,
मुझे इनका पता नहीं है, लेकिन वो जो वसीम अकरम है शनेरा जो है वो तो मुझे पता है कि वो ऑस्ट्रेलियन है।
तस्लीम आरिफ की मेरा ख्याल है
इनकी भी वाइफ ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, हम जीशान हमें बता सकते हैं, जीशान को बड़ी खरबे होती हैं इस तरह की उसके पास।
खुद भी ऑस्ट्रेलियन, बिकॉज वो जब भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाते हैं तो जितने भी सिंगल्स होते हैं सारे शादी कर लेते हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों? लड़कियां खूबसूरत हैं या लंबी हैं?
बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है।
बस एक ही मुल्क है दुनिया में जिस जहाँ पे लड़कियां खूबसूरत हैं, मुझे
नहीं, वहाँ पर और दूसरी जगहों पे वो क्रिकेट खेलते हैं ना, जाके जैसे स्वीडन में है, डेनमार्क में है, मगर वहाँ पर
पिशावर में तो बड़ी क्रिकेट खेली जाती है और पिशावर में तो बड़ी अजीब लड़कियां हैं। मजे भाई,
मैं एयर पर उसका जवाब दे नहीं सकता। तो मेरा ख्याल
भाई, हालांकि आपकी उम्र खाली 18 ईयर्स है, लेकिन आप इतने नॉटी हैं,
एक्सपीरियंस है।
18 ईयर्स में तो आपको एक्सपीरियंस हो गया।
एक्सपीरियंस देखे, एक्सपीरियंस बात कर रहा है।
ठीक है जी, ओके भाई,
इससे पहले कि मैं मुश्किल में आ जाऊं, मेरा ख्याल है मैं शादी जी को खुदाफिज कह दूं, क्योंकि मैं मुश्किल में आना नहीं चाहता।
ठीक है
शादी जी,
थैंक यू वेरी मच, माय भाई, आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह। कल फिर खबरें इसी वक्त,
बिल्कुल जी,
नॉट टू वरी अबाउट इट। कुछ स्पॉन्सर्स का पैगाम, विल बी राइट बैक।
बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मौका, ऑटो लोन और ऑनलाइन यूटिलिटी बिल्स जैसी बेशुमार सहूलियात। अभी www.bop.com.pk पर ऑनलाइन रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर्म फिल कीजिए और पाइए एक्सीलेंस यूनिट के जरिए 24 घंटे डेडिकेटेड सर्विसेज। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्क का ख्याल।
एना सोना कर लिया, हुन अप्लायंसेस भी स्टेनलेस स्टील दे ही चाहिए।
हाँ जी, स्टेनलेस स्टील दे अप्लायंसेस मिलेंगे तानू ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते, जिसे फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, थ्री पीस किचन बंडल, इस तो अलावा फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर, एनर्जी सेवर, एनर्जी स्टार, ते टीवी सेक्शन एच सोनी, सैमसंग, पैनासोनिक, शार्प, हर साइज से हर ब्रांड दा टीवी विद द लोएस्ट प्राइसेस इन द टाउन, सिर्फ ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस ते। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowie Drive West Brampton, ya call karo 905-450-2828-905-450-2828.
CIBC Global Money Transfer ke saath apne parivar ko zyada se zyada khushiyan de. CIBC Global Money Transfer ki $0 transfer fees ka fayda uthayen aur apne parivar tak pahunchayen aur bhi zyada paise. आज ही cibc.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
COVID-19 से हमने ये सीखा है कि एक छोटी सी चीज कितनी तेजी से फैल सकती है, एक उठती लहर की तरह। अगर हम में से ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा लें तो हम एक बड़ी लहर शुरू कर सकते हैं, कनाडा के लोगों की लहर, जो हमें अपने प्यारी जगहों और अपने प्यारों के पास लौटने में मदद करेगी। हम सब वैक्सीन लगवाकर मदद कर सकते हैं। canada.ca/covidvaccine पर मजीद जानें। हुकूमत कनाडा की तरफ से एक पैगाम।
J&G Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&G Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obey at 416-898-3800-416-898-3800. Brokerage license number 13034.
Ontario ka COVID-19 plan phailav ko rokne aur zindagiyan bachane mein madad faraham kar raha hai. जब तक हम सबको वैक्सीन नहीं लग जाती, मास्क पहने, अपने हाथ धोएं और फासला रखें। रोजाना हजारों लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपकी बारी जल्द आने वाली है, ontario.ca/covid-vaccine-plan पर मजीद जाने या 300 जबानों में मालूमात के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। अदायगी शुदा मनजानिब हुकूमत ओंटारियो।
सोटी फर्नीचर वालों अपने वैल्यूएबल कस्टमर्स वास्ते एक खास सूचना। लॉकडाउन दे मौजूदा सिचुएशन नु देखते हुए अपने कस्टमर्स दी सेफ्टी लई सोटी फर्नीचर ने कर्बसाइड पिकअप अते डोर डिलीवरी दी सर्विस शुरू कर दिती है। तुसी इना दी वेबसाइट ते जाके अपना फर्नीचर पसंद करो ते अपना फोन नंबर इना नु ईमेल करो central@sodifurniture.com ते। सोटी फर्नीचर दी सेल्स टीम वर्चुअल टूर्स अते बेस्ट डील्स लई तुहानु आप फोन करेगी। खूबसूरत फर्नीचर बेस्ट प्राइसेस से मिलेगा सोटी फर्नीचर तो।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई आज ही SNS लॉयर्स नु कॉल करो 416-655-2000।
बैंक अल्फला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहें पैसे डालें और जब चाहें पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अल्फला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
Pizza's Pros and Wings, 6 locations to serve in GTA, North York, Brampton, Etobicoke, Yaho, Mississauga. Fresh or mazedar pizzas ki variety, ya order karna ho apna man pasand custom made pizza. Iske alawa, pinza roti, potato wedges, fries, salad, garlic bread ya khane ho garlic fingers. To order or take out, call 905-789-8838,
905-789-8838, www.pizzapros.ca। गाड़ी, घर या कमर्शियल, जैसे कि बिजनेस, ट्रक्स, डिलीवरी व्हीकल्स, कार्गो वैन्स, वर्कशॉप्स, ग्रोसरी स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स की इंश्योरेंस के लिए वकार अजीम से राब्ता कीजिएगा। वकार अजीम यकीनी बनाएंगे कि कार, घर या कमर्शियल इंश्योरेंस कम अज कम रेट पर लेकर दे, मगर कवरेज आपको बेहतरीन से बेहतरीन मिले। यकीनन अपने पैसे और वक्त की बचत के लिए ईमानदार और रिलायबल सर्विस, मोस्ट कॉम्पिटेटिव रेट्स के लिए वकार अजीम 416-302-2522, 302-2522।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब RS वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
Fail to remain stop at the scene,
red lights या फिर सीट बेल्ट,
permit drive without insurance,
racing, student driving या फिर caught while using phone,
speeding,
RS वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 905-454-2112,
454-2112। अब मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंटम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के काकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असिस्ट इन रियल एस्टेट, ही विल मेक मॉर्गेज इजी फॉर यू। काकब जावेद मॉर्गेज एजेंट, 416-454-6065।
अगर आपको पर्सनल ऑटो या होम इंश्योरेंस चाहिए तो बिल्कुल ना घबराएं, कॉल करें ऑल स्टेट के मोहम्मद सिद्दीकी को, जिनके पास बहुत साल का इंश्योरेंस और सेल एक्सपीरियंस है। कॉल फॉर फ्री कोड एंड फाइंड आउट हाउ यू कैन सेव अप टू 30% ऑन ऑटो इंश्योरेंस। कॉल मोहम्मद सिद्दीकी 647-203-5546, 647-203-5546।
अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर से हमारे फार्म मुजफ्फर, हम 8:30 तक आपके साथ हैं, 8:30 तक हम आपके साथ हैं, आपने हमारे साथ रहना है। लो, मैं देख रही थी कौन कौन था हमारे साथी कि आज इंटरव्यू, बड़ा मजा आया मुझे लेके, जनाब लोधी साहब से, जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लोधी के साथ। आज मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करनी थी, देखिए टेक्निकोलॉजी, क्या क्या कहती थी, टेक्निकोलॉजी,
एक और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कहा जाता था,
टेक्नोलॉजी,
ठीक है, टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री कहा जाता था, निमोनिया को पनूनिया कहा जाता था. अंग्रेजी भी क्या कमाल की. वो कहते हैं ना जुबान है. मगर साहब टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है. मैंने आपके साथ आज प्रोग्राम के शुरू में शेयर किया था एनवायरमेंटल इशू की वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है उसमें ज़मीन में पे कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होती जा रही, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर 1 डिग्री प्लस यानी 1 डिग्री से ज़्यादा सेंटीग्रेड ऊपर चला गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है. अब भी ना एक जो पेंट आज ये इन्वेंशन ने मुझे, और जब मैं इस इन्वेंशन की बात कर रही हूँ ना तो मैं पास्ट की तरफ मुझे देखे गई. एंड ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही, मुझे खुद ज़ाती तौर पे देखने का मौका मिला. एक्चुअली मैं खुद लाहौर की रहने वाली, और मतलब ज़ाहिर है मेरे माय फादर वाज अपॉइंटेड इन साहिवाल, और अब्बा जी नहीं अपॉइंटेड इन रिटायरमेंट के बाद माय फादर केम इन साहिवाल, मगर हमारा घर लाहौर में ही था. ज़ाहिर है लाहौर में रहना आना जाना रहा, उसके बाद शादी के बाद मुजफ्फर के साथ, और फिर मगर फिर मैं हमने दोनों ने जब कारोबार शुरू किया तो सही बात होता, मगर लाहौर में आके कभी ये नहीं था कि कोई यादगारों को देखने के लिए जाते. अभी कोई तीन चार साल पहले ना हम लोग लाहौर में थे तो माजी जमाल साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, तो मेरे भाजन ने पूरा एक, क्योंकि जाहिर है इनकी बेटी पहली बार लाहौर गई थी, इनकी बेगम पहली बार गई थी लाहौर, शी लव लाहौर वाय. एक तो वो बड़ी हैरान हुई कि सड़कों के ऊपर गाय बकरियां नहीं नजर आ रही, शी वॉज सरप्राइज नंबर वन. नंबर टू कुत्ते नहीं इतने नजर आ रहे, हालांकि हम अंदरूनी लाहौर भी गए, हर तरफ गए थे. तो वहां पे मॉर्निंग आवर्स में ना एक रिक्शे की सवारी का बंदोबस्त किया गया, और ये बड़े रिक्शे हैं, आई विश के मैंने वो प्रिपेयर होती तो मैं तस्वीरें भी आपको दिखाती. तो ये तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव होती है रिक्शों की, जो पाकिस्तान की तमाम यादगारों के ऊपर लेके जाते हैं, जैसे बादशाही मस्जिद पे लेके गए, दे टुक अस टू एवरीवेयर. तो पाकिस्तान की ये नवाज शरीफ साहब का दौर का जमाना था, और ये एक अच्छा काम वो लोग कर रहे थे कि जो पुरानी इमारतें थी उनको प्रिजर्व, हिस्टोरिकल जो बिल्डिंग थी ना उनको संभालने की तैयारी थी. अब वो जो बिल्डिंग टूटी हुई है तो फिर इनके हमारे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने तज़िया किया उसके मटेरियल का, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का इस्तेमाल बहुत किया हुआ था. आज जब मैं इसको पढ़ी थी ना तो देखते फिर इन्होंने वो लाइमस्टोन के साथ मटेरियल तैयार किया और उसकी रिपेयर हो रही थी. आज जो मैं ये रिपोर्ट पढ़ रही थी ना कि दुनिया का टेम्परेचर जब बढ़ता चला जा रहा है, तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ने ये पेंट तैयार किया है. ये घर के अंदर नहीं, घर के बाहर की तरफ स्टक्को की तरह से पूरा का पूरा अगर पेंट कर दिया जाए तो सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो उस रोशनी को ये मुनक्किस कर देगा. अब एक्चुअली होता क्या है कि जब गर्मी होती है तो बाहर से हरारत पड़ती है, छत गर्म होती है, दीवारें गर्म होती हैं, गर्मी अंदर की तरफ आ जाती है और घरों का टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ जाता है साहब. अब वो घर के ऊपर ये पेंट किया जाता है, उसके बाद ये पेंट करने के बाद इन्होंने बाकायदा हीट का एनालिसिस किया और उन्होंने देखा कि यस, ये पेंट होने के बाद सूरज की रोशनी जो है वो पूरी की पूरी मुनक्किस, हीट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, मुनक्किस हो जाती है. तो वो रोशनी, अब देखिए क्या कमाल का, अमेरिका बहुत शुक्रिया, हमें इसकी डिटेल चीजें निकालनी है कि जितनी सूरज का जो स्पेक्ट्रम पड़ता है इसके ऊपर सारा का सारा मुनक्किस हो जाता है. घर के अंदर उस दीवार के ऊपर गर्मी की एक कतरा नहीं पड़ता. जब घर की दीवार नहीं गर्मी होगी तो घर के अंदर गर्मी नहीं आएगी. और वो कहते हैं एयर कंडीशनर की जरूरत, डेफिनेटली ये पेंट बहुत एक्सपेंसिव जरूर होगा. ये फोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने तैयार किया है, सफेद पेंट है जिसमें 95.5% सूरज की रोशनी को मुनक्किस करने की सलाहियत है, और इर्द गिर्द के माहौल की निस्बत ये जब हर हीट जा ही नहीं सकेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, 19 डिग्री फॉरेनहाइट तक ठंडा करता है. अब ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये जो रिपोर्ट है ये कोई मैं ऐसे नहीं कह रही, इस रिपोर्ट को बाकायदा जर्नल रिपोर्ट्स फिजिकल साइंस में इसको पब्लिश भी किया गया. अगेन मैं इस रिपोर्ट को कहीं सोशल मीडिया से नहीं पढ़ रही, हम बाकायदा इसकी फुटेज आपको दिखा रहे हैं. ये यूनिवर्सिटी, पॉर्ट यूनिवर्सिटी में पेंट तैयार किया गया. इस पेंट की तैयारी कई साल की मेहनत का नतीजा है, जिसके लिए मुख्तलिफ पेंट फॉर्मुलेशन को आजमाया गया। अब इस पेंट में अब क्या वजह है, इसकी खासियत क्या है, दिस इज व्हाट द सरप्राइजिंग फैक्टर इज। वो कहते हैं कि इस पेंट में कैल्शियम कार्बोनेट को बुनियादी जुज के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस पेंट का मुवाजना कमर्शियल वाइट पेंट से, अब उन्होंने क्या किया कि आम बिल्डिंग के ऊपर सफेद पेंट हुआ तो जो वो इंफ्रा रेड कैमरा है उससे उनका, अब ये देखिए आप अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने दो स्लैब रखी हुई है, एक पे जो आम कमर्शियल वाइट पेंट किया जाता है और एक जिस पे ये पेंट किया गया, ये देखिए एक के ऊपर आम पेंट और एक के ऊपर कमर्शियल पेंट। उसके बाद इंफ्रारेड कैमरे से जब इसका मुवाजना किया तो जो आम पेंट था उस पे सूरज की रोशनी और हीट अब्जॉर्ब हो रही थी जबकि इसके ऊपर रोशनी अब्जॉर्ब नहीं हो रही। अब तहकीकी टीम जिसने इसको तैयार किया उनको ख्याल है कि मुस्तकबिल में ये पेंट घरों के ऊपर, छतों पे, गाड़ियों में और सड़कों पर भी इस्तेमाल होगा। इमारत में बहुत तवानाई इस्तेमाल करने वाले एयर कंडीशनर जो है उनकी तलब कम हो जाएगी। तो साहब एयर कंडीशनर का बिजनेस गोइंग डाउन। इस पेंट को आम अफराद तक पहुंचने में भी काफी वक्त दरकार होगा और तहकीकी टीम से यह भी जायजा लिया जा रहा है कि दीगर रंगों में भी इस तरह की, यानी आपने घर की बाहर, आपको पता है इन कैनेडा में यू कैन नॉट हैव अ पिंक होम, इज दैट राइट?
नो, नॉट इन कैनेडा, ऑन्टेरियो में नहीं,
ऑन्टेरियो
न्यूफाउंडलैंड वगैरह में आप कर सकते हैं।
या के अच्छा, अब ये लाइमस्टोन के बारे में जब मैंने इसकी बड़ी पूरी ठीक ठाक रिसर्च की तो मैं लाइमस्टोन के बारे में देख रही थी कि ये लाइमस्टोन जो है इसकी ये करैक्टरिस्टिक है कि ये हीट को नहीं जाने देता। मैं आपके साथ लाइमस्टोन एंड एंशियंट ग्रीक आर्किटेक्चर में भी इसको इस्तेमाल किया गया है, कोट एंड कोट्स में, इट हैज द न्यूमरस एप्लीकेशन एज द बिल्डिंग मटीरियल सिंस इट इज ईजी टू कट, इट्स हैवी, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट एक्सपोजर। लाइम स्टोन हैज बीन यूज इन द आर्किटेक्चर्स इन द एंशियंट टाइम्स, द ग्रेट पैरामिड्स ऑफ इजिप्ट। यानी अच्छा, अब ये कि जो मॉल्टन तैयार किया जाता है, जो मटीरियल तैयार किया जाता है बिल्डिंग को बनाने में, इवन वो जो ये जो पैरामिड्स हैं उनके बनाने में भी ये लाइम स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। लाइक द इजिप्शियंस द एंशियंट ग्रीक यूज लाइम स्टोन इन सम ऑफ देयर ग्रैंडेस्ट टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स की तैयारी में भी उन्होंने किया था। तो वही कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, व्हाटएवर इट इज यू कैन थिंक अबाउट इट।
अमेजिंग अमेजिंग, आप ये देख लें कि इसको अगर लगा दें छतों पे तो फिर घर में तो बहुत
कूल। दैट्स व्हाट इट इज। वो कहते हैं कि इट विल टेक सम, आम लोगों तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम, बट दिस इज अ ग्रेट
इन्वेंशन,
ग्रेट इन्वेंशन। तो बहरहाल ये तो थी, एक गीत की तरफ आपको लेके चलती हूँ साहब। टाइटैनिक का आपने जिक्र सुना हुआ और टाइटैनिक की तरह का एक शिप जो है इस वक्त चाइना तैयार करने की कोशिश कर रहा है, यानी उस पर राहल में से गुजर रहा है। आपको पता ही है कि अगर कभी कोई शिप डूबने लगे तो शिप का जो पायलट है वो अपने शिप को छोड़ता नहीं। मैं ना इस चीज को कंपेयर करने, एंड मैं किसी नेक्स्ट जनरल साहब का जब इंटरव्यू करूंगी आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद। तो जब भी कोई सिंकिंग शिप होता है ना तो शिप का पायलट जो है वो शिप को नहीं छोड़ता, वो पहला चांस बाकी लोगों को देता है। आपको याद होगा
ही इज द लास्ट पर्सन टू कम आउट,
ही इज द लास्ट पर्सन टू कम आउट। मुझे बड़ा दुख होता है आपने पाकिस्तान की तरफ से और मुख्तलिफ सेल्फिश कंट्रीज की तरफ से कि उनके लीडर्स जो हैं वो असाइलम के लिए बाहर, मिसाल के तौर पर सिर्फ पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं, शायरान भी अल्टीमेटली दो गज जमीन भी ना मिली कुचा यार में ही, उन्होंने भी
उनको तो मजबूर कर दिया गया।
वॉट एवर, ये तो आप कह सकते हैं ना, ये तो एक पैक्ट हुआ होगा, एक पैक्ट हुआ होगा, वरना वो कहते कि मैं नहीं मूव होता तो ना मूव होते। ठीक, मेरे पास जो जाहिर है ये मैंने पहले भी पढ़ा था, एडोल्फ हिटलर के बाद जब मैंने पढ़ा ना, यानी वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इनके पास जर्मनी के पास इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं थी। जर्मनी, अब तो जर्मनी बहुत छोटा सा नजर आता है, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले देखें तो जर्मनी का नक्शा बहुत बड़ा था। फिर जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत थी, जर्मनी के पास टैंक्स भी थे, जर्मनी के पास जहाज भी थे, द बेस्ट टेक्नोलॉजी दे हैड, दे वर द जर्मन्स। मगर जाहिर है हिटलर से कोई ना कोई गलतियां भी हुई होंगी। आई वॉज रीडिंग दिस आर्टिकल, कहते हैं कि हिटलर को आखिर में ये अच्छा ही हैड अ अपॉर्चुनिटी कि वो जर्मनी को छोड़ के फ्ली कर जाते या किसी और तरफ चले जाते, मगर नो ही डिड नॉट लीव द जर्मनी. मैं इसको कवर करूंगी. एंड यस, उनकी गर्लफ्रेंड जो थी, उन्होंने अपने जो मुलाजमीन थे उनको, ये तकरीबन कहते हैं जमीन से 50 फुट नीचे एक बंकर था जिसमें जाके ये ठहर लिए थे. इन्होंने इनकी जो मुलाजमा आखिरी दिनों में इनके पास थी, कहते हैं कि हिटलर के कंधे झुक गए थे और दिनों के बीच में वो बूढ़े हो गए थे, उनके चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ गई थी. एंड बल्कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को जाने के लिए कहा, मगर उनकी जो गर्लफ्रेंड उनके साथ रही शी रिफ्यूज्ड कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी. फिर हिटलर ने आखिर में जिस शख्स को अपना निकाह पढ़ाने के लिए या जो भी मैट्रिमोनियल सेरेमनी करने के लिए कहा था, उसको किस तरह से बुलाया और फिर निकाह किया और फिर किस तरह से अपने आप को शूट कर लिया. शूट कर ही इफ ही वॉन्टेड ही कुड हैव यू नो फ्ली कर सकता था, छोड़ सकता था जर्मनी को, बट ही डिड नॉट प्रेफर. वो उसने कहा था कि मैं यहीं पे ही मरूंगा, जर्मनी में ही मरूंगा. हाँ, उन्होंने एक पेंटिंग थी जो उन्होंने कहा कि मेरा ड्राइवर यहां से निकाल के लेके जाएगा. एक और उनका शायद खानसामा था जिसको उसने कॉल करके कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को फलां जगह पे ले जाके आग लगा देना ताकि मेरी बॉडी को कोई रिकग्नाइज ना कर सके. फिर उसने अपने उन तमाम इंपॉर्टेंट पेपर्स की भी निशानदेही कर दी थी कि मेरे उन तमाम पेपर्स को भी जला देना ताकि दुश्मन के पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना जाए. देखिए साहब, मैं आपको बताती हूं कि अगर आपने द क्राउन देखी है ना, अगर आपने द क्राउन देखी है जो कि इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर चली है, जो इंग्लैंड के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी बाज गलतियों का अजाला किया बड़े खूबसूरत तरीके से. जो क्वीन एलिजबेथ हैं, इनके वालिद का जो बड़ा भाई डेविड था जिसको बादशाह दी भी गई थी, मगर ही फॉल इन लव विद विडो वुमन के साथ और फिर वो मैरे उसने शादी कर ली थी, फिर उनको एबडक्शन उनको मिल गई थी, निकाला देश निकाला मिल गया था. बट इट वाज द लेडी हैड सम टाइज विद द जर्मन्स. जो प्रिंस जो क्वीन एलिजबेथ है, इसका हस्बैंड बुनियादी तौर पे ही वाज जर्मन, और ज्यूस जो थे वो जर्मन्स को नापसंद करते थे. उन्होंने अपने नाम भी तब्दील किए थे, बेसिकली इन्होंने अपने नाम सबने तब्दील किए हुए हैं. और फिर इन्होंने अपनी उस गलती का अजाला करने के लिए इसराइल को उस इलाके में एक नई सेटलमेंट दी थी. ऐसे ही मेरे दिमाग में आई तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं. अलबत्त जो हिटलर थे, हिटलर ने अपने उसको ड्राइवर को, उसने कहा मेरी जो पेंटिंग है ये तो मेरा ड्राइवर निकाल के लेके जाएगा. खानसामे को कहा कि मुझे, मैं अपने आप को गोली खुद मारूंगा, तुमने मुझे जाके जलाना है ताकि मेरी लाश को कोई पहचान ना सके और जितने मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं इनको भी आग लगा देनी है. बहरहाल, मगर उससे पहले एक गीत की तरफ आपको लेकर के चलती हूँ, आप इस गीत को एंजॉय कीजिए. गीत कौन सा है माजिद भाई?
गीत शिदात रॉय की आवाज में लगा रहा है.
लगा रहा भाई, लगे रहो भाई.
मैं जब 10 साल का था तो मैंने 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है.
अब्बू!
मैं फिर 20 साल का हुआ, मैंने फिर 9 o'clock न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा
है. दस से मस नहीं होता, तू है एक आम आदमी यार, बस अब नहीं होता.
तो क्या करूं, हिम्मत हार दूं?
नहीं,
लगा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे खड़ा रहे खड़ा रहे तू खड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे लगा रहे लगा रहे तू लगा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे पड़ा रहे पड़ा रहे तू पड़ा रहे. बुजुर्गों ने मुझ
कैसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा बुजुर्गों को मैं ये बोला लग रहो बुजुर्गों ने मुझसे पूछा मुल्क कैसे ये चलेगा बुजुर्गों को मैं ये बोला
मुझे फिक्र ये नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा मुझे फिक्र ये कि ऐसे ही ना चलता रहे यार मुल्क में बड़ी टेंशन हो गई है कोई नहीं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो
कुछ ना कर तू सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे बस अल्लाह ही तेरा हाफिज है नाजुक मोड़ बन गया तस से मस नहीं होता तू है एक आम आदमी यार बस
अब तो दुख होता है यार
कोई नहीं अभी भी बड़े नेक लोग बाकी हैं इस दुनिया में
बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता बुजुर्गों को मैं ये बोला
नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला
बुजुर्गों ने मुझसे पूछा नेक कौन है ये तो बता बुजुर्गों को मैं ये बोला
नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला
सारे मुल्क में अमन अमान की सूरत-ए-हाल बहाल है
जैसे जमीन निकल जाएगी और फिर वो तुझे कहेंगे कहेंगे तू उड़ रहा है हवाओं में तू उड़ रहा है हवाओं में
तो क्या हम सचमुच हवाओं में उड़ेंगे हैं
तू नहीं समझेगा फिर लग रहे तू लग रहे कड़ रहे
इस लड़के की शक्ल शहजाद रॉय से कितनी मिल रही थी
जी आप प्रोग्राम में एक बार से खुश आमदेद और इसमें एक सेगमेंट जिसको हमने रिपीट किया कि बुजुर्गों से हमने कहा कि अगर कोई शरीफ है तो क्यों शरीफ है या अगर कोई ईमानदार है तो क्यों ईमानदार है इसलिए उसको मौका नहीं मिला चलिए एक चीज मैं आपको ये प्री पार्टीशन की एक वाक्य आपके सुनाने लगी हूँ एक डॉक्टर साहब डॉक्टर यानी नाम तो उसका बड़ा अच्छा था और शेख मोहम्मद आलम इनका नाम था शेख मोहम्मद आलम मगर इनको डॉक्टर लोटा कहा जाता था ये बात तो बिफोर पार्टीशन की है बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम स्पॉन्सर्स का जो इस काबिल करते हैं कि प्रोग्राम हम आपके साथ शेयर कर सकें आज मंडे है और आपको पता है मंडे को ग्रिल एंड अ चिक कहाँ है भला ग्रिल एंड अ चिक सोचिए यस 15 माउंट पेलियर के ऊपर बिल्कुल सही समझे बिल्कुल 15 माउंट पेलियर के ऊपर और आज रात का खाना कहाँ खाने जाना है ग्रिल एंड अ चिक पे मंडे स्पेशल इट्स वेरी डिलीशियस अच्छा अब आपको मैं बताती हूँ अगर आप मछली हर चीज को पकाने जैसे लोग कहते हैं ना कढ़ाई को पकाने का एक तरीका है अगर कढ़ाई खास इसके लिए टेम्परेचर कहीं आग तेज कहीं कम आप आजमा के देख लें कि बाज़ औक़ात हम मैं खुद भी पुलाव पकाऊं अगर गोश्त को ज्यादा पका लिया जाए तो गोश्त में ड्राइनेस आ जाती है सूखापन या चिकन ब्रेस्ट खाई नहीं जाती इसी तरह मछली खासतौर पर ये जो हमारी सैमन है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं ना तो भी वो सूखापन आ जाता है, रूखा रूखा लगता है जैसे आप कागज़ चबा रहे हैं। तो एक खास टेम्परेचर, इट्स माउथ वाटरिंग, वेरी डिलिशियस, वेरी डिलिशियस, यू मस्ट विजिट टुनाइट। और ज़ाहिर आप सबके पास फ़ोन है और अब तो पूरी दुनिया जिसके हाथ में फ़ोन है, पूरी की पूरी दुनिया उसके हाथ में। आप इनके रिव्यूज़ चेक करके देखिएगा, आप रिव्यूज़ जाके चेक करें, ग्रिल एंड चिक के ग्रेट रिव्यूज़, वेरी डिलिशियस दिस चिकन फिले सैंडविच। बल्कि अगर आप भी चाहें तो खाने के बाद अपने रिव्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। 15 माउंट पैलियर स्ट्रीट ब्रैम्पटन में ग्रिल एंड चिक, नंबर आप नोट कर लें, रात को मुलाकात होगी वहां पे तकरीबन 9 बजे के करीब, 9054560500। साहब बहुत से लोगों की जिंदगी का बहुत सा मकसद होता है, अपन तो दुनिया में आए हैं खाने के लिए और खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और क्या। अब देखिए बहुत सारी चीजें तो आगे ही मना हो गई। ओ माई गॉड, वो भी दिन थे जब हम दौड़ा करते होते थे, वो भी दिन थे जब हम सड़कों पे नहीं चला करते होते थे, हम वो जो ऐसे करके आड़ी तिरछी ईंटें लगी होती थी हम चलते ही उनके ऊपर थे। अब ना तो दौड़ा जाता है, मतलब सजदे न, मैं कल सोच रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला आपने भी कमाल कर दिया, नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो बैठ जाओ तो उठा नहीं जाता, उठ जाओ तो बैठा नहीं जाता। दैट्स लाइफ।
इसीलिए तो देखिए नमाज को किस तरीके से तरतीब किया गया है कि आप खड़े हो, फिर रुकू में जाएं आधा बैठना, फिर आप खड़े हो जाएं, फिर आप सजदे में जाएं, फिर आप सजदे में जाके फौरन बैठ नहीं जाते, आप सजदे में जाएं फिर बैठे, फिर सजदे में जाएं फिर खड़े हो जाएं, तो वह प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब जो है दोबारा जब भी करेंगे तो फिर जाके बैठ जाए,
गोडे ही ना काम करे तो फिर क्या करे,
फिर अच्छे से डॉक्टर का इलाज करवाए।
नहीं, इलाज की भी हम दवाई भी नहीं खाते, बट यू नो व्हाट, एजिंग प्रोसेस तो है ना, एजिंग प्रोसेस तो है ना। ऑफकोर्स साहब, वो पाकिस्तान में ना इंतखाबात का जब मौका आता है ना, या अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, इस वक्त की जो गवर्नमेंट, या देखिए ये वाहद गवर्नमेंट है, मैं बल्कि एक आर्टिकल देख रही थी हमारी जर्नलिस्ट की साइट के ऊपर, एक आर्टिकल था तो एक भाई, आई विश आई शुड हैव माई फोन, आई डोंट हैव माई फोन, आई हैव इट, वो कहते हैं कि मुझे इस हुकूमत पर तरस आता है, यानी ये पहला वजीर आजम है पाकिस्तान का। यस, उसकी उनकी उनकी जो गलतियां हैं वो सबसे बड़ी गलती ये है, द मैन सड़क पे जब ये जो पहले भी एक दो हुए थे, लोग सड़कों को ब्लॉक किया, लोगों को बाहर निकाला, आगे फिर यही कुछ करना है। फिर वंस ही केम इन द गवर्नमेंट, द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट ही डिड इज के कंटिन्यूअसली आज 3 साल होने के हैं, 3 साल में पुरानी हुकूमत के ही पीछे लगे हुए हैं, आपकी
गवर्नमेंट बनाने
तो आपकी ब्यूरोक्रेसी ने आपके साथ चलना नहीं है, नैब ने आज तक कभी जो फैसले किए कभी उनके ऊपर अमल पाबंद नहीं हुआ, मुशर्रफ दौर में भी आपकी इंक्वायरी हो रही थी, जिस बंदे के खिलाफ केस निकलता था अंदर के बंदे उसी वक्त ही केस को निकाल के बाहर कर दिया करते होते थे और वो बंदे का नाम निकालना पड़ जाया करता था क्योंकि दाएं बाएं से प्रेशर आ जाया करता होता था। द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट दिस गवर्नमेंट डिड इज के इन्होंने, जाहिर है इनकी मजबूरी थी, इनको सीटें कम मिली और फिर तरीन साहब ने जो काम करते हुए इधर उधर से परिंदे इकट्ठे किए, सारे के सारे मोस्ट ऑफ द गवर्न जो हमारे मिनिस्टर्स हैं ये वही जो दाएं बाएं से उड़ के आए हैं, जिन्होंने अपनी वफादारियां चेंज की हुई हैं। और अगर आप मुख्तलिफ और फवाद कुरैशी की बात कर लें और आप अपने वजीर खजाना की बात कर लें और अगर आप डिफरेंट सरवर साहब की बात कर लें, मोस्ट ऑफ देम उन्होंने भांत भांत का पानी पिया हुआ, यानी एक प्लेटफॉर्म से उठे दूसरे प्लेटफॉर्म में चले गए, दूसरे प्लेटफॉर्म से उठे तीसरे शाख को बदलते रहे। मगर देयर वाज अ टाइम कि अगर कोई ऐसा करता था ना तो उसका नाम ही बदल, उसका नाम लोटा रख दिया जाता था। यू नो व्हाट इज लोटा, थाली का बैंगन भी आपको याद ही होगा। कहते हैं ये पाकिस्तान में सियासी वफादारियां तब्दील करने और कलाबाजियां, बड़ा मजे का आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। कहते हैं कि जो लोग अपनी वफादारियां बदलते हैं उनको लोटा कहा जाता है। और अब इन्होंने जो राइटर हैं, राइटर कौन है, मैं अभी अकील अब्बास जाफरी साहब, जाफरी साहब कहते हैं कि मैंने जब लोटों की तारीख को खंगालना शुरू किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान की सियासी तारीख में इस एजाज جو یہ اعزاز پہلے دیا گیا ہے ان کا نام ڈاکٹر شیخ محمد عالم تھا, وہ بھی لوٹا گروپ سے. مزے کی بات ہے تعلق انڈیا سے نہیں تھا, ان کا تعلق بھی اپنے ادھر پاکستان سے, پاکستان والے انڈیا سے تھا. ان کو لوٹا اتنی مشہور ہوئی کہ آج بھی تاریخ میں انہیں ڈاکٹر عالم لوٹا کے نام سے یاد. اچھا بھلا نام تھا, نام دیکھ کتنا خوبصورت ہے.
مگر لوٹا اب لاسٹ نیم میں بھی ہو گیا, پتا ہے آپ کو؟
ہاں,
لوگوں کا لاسٹ نیم بھی لوٹا ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ان کی فیملی کا نام لوٹا ہو گیا.
ان کا نام تو دیکھیے کیا ہے, ڈاکٹر شیخ محمد عالم.
مگر لوٹا جو ہے وہ
نہیں نہیں لوٹا تو اب آپ اٹک جائیں تو اٹک جائیں, مگر کیونکہ انہوں نے وفاداریاں بدلی تھیں ان کو اس لیے لوٹا کہا جاتا ہے. چبلا نام تھا ڈاکٹر شیخ محمد عالم ان کا نام تھا. اب سنیے, کہتے ہیں ان کے لوٹا کیوں ملا, اس لیے کہ جب ان کی اداؤں کی وجہ سے دیا, جب معلوم کرنے کے لیے انہوں نے جعفری صاحب نے تاریخ کے اوراق کو کھنگالا تو کہتے ہیں ڈاکٹر شیخ محمد عالم کا تعلق سرگودھا سے تھا. یہ 1887 میں پیدا ہوئے تھے, اور چراغ حسن حسرت کی کتاب ہے دو ڈاکٹرز, چراغ حسن حسرت کی کتاب, نادر نایاب کتاب دو ڈاکٹرز, اس میں ڈاکٹر لوٹا یعنی شیخ محمد ڈاکٹر شیخ محمد عالم کی تفسیر ملتی ہے. جو ڈاکٹر یہ جو جناب چراغ حسن حسرت جو ہے ڈاکٹر لوٹا کے بارے میں لکھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے کچھ دنوں لاہور گورنمنٹ کالج میں بھی تعلیم پائی لیکن بی اے آکسفورڈ سے پاس کیا, بیرسٹری کی ڈگری لندن سے لی, چلتے چلتے ڈبلن سے ایل ایل ڈی ڈپلوما بھی لے آئے اور لاہور آ کر مزے سے بیرسٹری کی پریکٹس شروع کر دی. جنگ سے پہلے کا زمانہ تھا, یعنی 1885 میں اگر پیدا ہوتے ہیں تو فرسٹ ورلڈ وار آ گئی نا. ڈاکٹر صاحب کی اٹھتی جوانی اور جوانی چنانچہ افتادانی تھی, اگرچہ ان کی پریکٹس چمک گئی تھی, ظاہر انگلینڈ سے پڑھ کے لوٹے ہوئے تھے, لیکن لاہور کی آب و ہوا راست نہ آئی اور وہ جہلم اٹھ گئے. یعنی پڑھ پڑھا کے باہر سے آئے, لاہور میں سیٹل ہوئے, کامیاب بھی ہو گئے, پر دل نہیں لگا, یعنی سیلانی طبیعت تھی نا پارا قسم کی, تو لاہور میں نہ ٹکے اور جہلم چلے گئے. پھر وہاں سے اپنے شہر سرگودھا آ کر ڈیر ڈال دیے. دنیا کے نزدیک سرگودھا کے ایک وکیل کی بھائی کیا حیثیت, اس علاقے سے باہر کتنے لوگ اسے جانتے ہوں گے. سرگودھا میں وکالت ہی کرنا تھا تو بیرسٹری پاس کرنے کے لیے آکسفورڈ کیوں گئے, آپ باہر کا انگلینڈ کا چکر کیوں لگایا, آپ نے آکسفورڈ سے بی اے کی ڈگری کیوں لی, ایل ایل ڈی کا ڈپلوما آخر کس کام آئے گا. خیر ڈاکٹر محسن حسرت لکھتے ہیں کہ مجبوری کی اور بات ہے, لیکن یہ تو نہ ہو سکتا تھا کہ اس گوشہ گمنامی میں یعنی سرگودھا میں ساری عمر گزار دی جائے. عمر گزارنا تو درکنار, اس تصور سے ہی وہ ڈرنے لگے. حسرت مزید لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم کے ذہن میں خلافت, کانگریس, چرخا, سیتا گرہ اور اس قسم کے مسائل گردش کرنے لگے. اب یعنی ان کو سیاست دان بننے کا شوق ابھرنے لگا. مذہب سے انہیں کوئی شغف نہیں تھا, مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں سے بھی الگ تھلگ رہتے تھے. ان کے گھر کا ماحول کسی حد تک مذہبی تھا, لیکن آکسفورڈ اور لندن میں قیام, باہر کے ملک میں قیام نے ان کی دماغی سوچ کو بدل دیا تھا. یعنی محسوس کر رہے تھے کہ اس دور میں جبکہ خلافت کا مسئلہ اور کانگریس کی تحریکوں کی باغ دوڑ وکیلوں اور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے, تو پھر مجھے بھی ضرور کسی تحریک کا حصہ بن جانا چاہیے تاکہ بڑی بڑی چیزیں میرے پاس آئیں. حسر لکھتے ہیں کہ ایک دن ڈاکٹر عالم بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے, دفتر انہیں خیال آیا کہ بڑے لوگ بڑے عہدے چھوڑ کر کانگریس اور خلافت کی تحریکوں میں شامل ہو رہے ہیں, میں بھی کسی تحریک کا حصہ بن جاتا ہوں, پریکٹس کو چھوڑتا ہوں, میں کسی تحریک کا حصہ بن جاتا ہوں. جناب انہوں نے اسی وقت مولانا محمد علی جوہر کو خط لکھا, اور مولانا محمد علی جوہر نے جب ان کی اتنی تعلیمی قابلیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا فوراً سے پہلے علی گڑھ آ جاؤ. اب وہ کہتے ہیں سرگودھا کے اسٹیشن پر عامر طرح ان کی وہ نکالنا, ان کی ڈگریز نکالنا. وہ کہتے ہیں سرگودھا کے اسٹیشن پر دوست احباب کے علاوہ بہت سے کانگریسی اور خلافتی کارکنوں نے چھوڑنے آئے, کیونکہ وہ محمد علی جوہر کے کہنے پہ علی گڑھ جا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب پکا خدر کا جوڑا پہنے, لیڈر لیڈر بنے لگے تھے نا, لیڈر خدر کا لباس پہنا, گلے میں پھولوں کے ہار, اور بس صاحب انجن نے سیٹی دی, پٹافٹ ڈاکٹر صاحب گاڑی کے اندر بیٹھے. اسٹیشن بندے ماترم, اللہ اکبر, زندہ باد کی صداؤں سے گونج اٹھا. علی گڑھ میں مولانا محمد علی اور دوسرے لیڈرز جامعہ ملیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کر رہے تھے. نئی یونیورسٹی کے پاس نہ روپیہ تھا نہ عمارت, بس اللہ کا نام تھا, اور ہم اکثر پروجیکٹ آپ کو پتا ہے ایسے ہی شروع کرتے ہیں. پہلے خانوں میں تعلیم دی جاتی تھی, پھر گھاس پھونس کے چند جھونپڑے تعمیر کیے گئے. ڈاکٹر صاحب کو اگرچہ پورے ملک میں تو کوئی نہیں جانتا تھا نا, لاہور میں پھر بھی چار لوگ جاننے لگے تھے. لاہور سے دوسری جگہ گئے, دوسری جگہ سے سرگودا, سرگودا میں وہ کوئی نہیں جانتا, صرف دائیں بائیں کے لوگ جانتے تھے. اب پورے ملک میں کون جانے. لیکن ان کے پاس ولایت کی ڈگری, ان کی قربانی سے سب متاثر تھے. ڈاکٹر صاحب نے دیکھ اتنا پڑھا لکھا ولایت سے واپس لوٹے, اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے گئے, اور اب تو وہ پاکستان بننے کی تحریک کا حصہ بن گئے ہیں. بہرحال حسرت لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عالم جب تک خلافت کی تحریک میں شامل نہیں ہوئے ولایتی سوٹ پہنتے تھے. آپ دیکھیے پرسنالٹی کیسے بدلتی ہے, کہ وہ ولایت سے واپس لوٹے تھے نا, مذہب کا بھی اتنا اثر نہیں تھا ان کے اوپر, وہاں کی آب و ہوا کا اثر تھا. تو جب تک تو وہ تحریک کا حصہ نہیں بنے تو ولایتی سوٹ پہنتے تھے. داڑھی اس روز اس طرح گھٹتی تھی کہ یعنی اچھی طرح سے شیو کر لیتے تھے. لیکن جناب تحریک کو جوائن کیا اور ڈاکٹر صاحب کی وضاحت بدل گئی, لباس بھی بدل گیا, ولایتی لباس کو پہننا چھوڑ دیا, اور جناب اپنے کھدر کا انہوں نے پاجامہ پہننا شروع کر دیا. کھدر کی ایک ابا سر پہ